أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ بھی عشق اور محبت کی بات چل رہی ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ پوری دین کا، پوری شریعت کا اور پوری کائنات کی پوری جان ہے یہ عشق اور محبت. عشق اور محبت جو ہے بہت ہی زبردست اور اعلیٰ چیز ہے، بس اس کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. اگر یہ عشق اور محبت کا اللہ پیٹرول نہ ڈالیں ہمارے قلوب کے اندر، تو پھر یہ کائنات کی تکمیل نہیں ہو سکتی. جیسے اس ڈوبے زمین پہ سب سے قابل محترم اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے ماں کو دیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے خود علیہ وسلم کے ذریعے بات کہلوائی کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ایک 70 ماؤں سے تو زیادہ مطلب سمجھانا ہے، ایک ماں کی محبت اتنی زبردست ہوتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیا ہوگا. تو اور ایک اور حدیث پاک میں یہ منقول ہے، اللہ کا مشی ماں فرمائے کہ ہمارے پیارے آفید و جہاں اگرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے 99 حصے اپنی رحمت کے اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کو اللہ پاک حشر والے دن اپنے گناہگار بندوں پر ظاہر کریں گے. 99 حصے، یہ ایک حصہ اس دنیا میں ڈالا ہے اپنی رحمت کا، جس سے یہ پوری کائنات، پوری دنیا جڑی ہوئی اس محبت کے تانے بانے میں، جس کی وجہ سے ماں 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھ کے تکلیف اٹھاتی ہے، پھر درد زہ ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے، نمبر تین پھر اس کے بعد 2 سال تک اپنا شیر مادر جگر کا خون دودھ پلاتی ہے. تو اس لیے 3 چیز ہو گئی، اس لیے ماں کے 3 درجے ہیں، وہ تسلیم فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا یا جوان ہو بھی جائے، تو ماں اس کے کھانے کا، پینے کا، ادنے موتنے کا، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے. صحیح ہے نا؟ کیا ماں کی محبت کے کہنے. اسی طرح جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں جنگلوں میں، حتی درندے یا جو بھی ہمیں کہیں محبتیں نظر آتی ہیں، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ اس 1% محبت اور رحمت کا شاخصانہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا ہے. 1% محبت کا کمال چل رہا ہے یہ. تو اس لیے لوگ تکلیف بھی ماں اٹھا لیتی ہے، محبت ہوگی تو سامنے والے کی تکلیف بھی اٹھا لیں گے. اگر ہمارے دن میں محبت نہیں ہے تو سامنے والے کا کام کرنا ہمیں بوجھ لگے گا، محبت ہوگی تو ختم کہانی، گیم ہی ختم ہو گیا، پھر تو بڑی سے بڑی آدمی مصیبت بھی اٹھا لے گا، پھانسی بھی چڑھ جاتے ہیں لوگ خوشی پوچھی جب محبت ہو جاتی. جیسے آفید ہو جہاں، ہمارے پیارے آفید ہو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا کیا کہنا، اور امتی کے اندر اللہ نے وہ تو ویسے ہی بلٹ ان کیا، ودیت رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. تو کتنے لوگ جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، گستاخ رسولوں کا صفایا کر کے، اور ہنستے ہوئے خوشی خوشی پھانسی پہ چڑھ گئے، گردنیں کٹوا لی اپنی. یہ تھی محبت، دیوانگی والی محبت. تو محبت کو ہم لوگ سمجھے نہیں، محبت ہوتی کیا ہے، لیکن بس کیا اس کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے. ڈائریکشن اگر یہی محبت جب غیر اللہ سے ہوئی، لڑکیوں سے ہوئی، عورتوں سے ہوئی، نفسانی خواہشات سے ہوئی، شیطانیت سے ہوئی، تو زندگی بربادی کی طرف جائے گی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. اور جب محبت کی ڈائریکشن ہم نے درست کی اللہ رسول کی طرف، آل اور اصحاب کی طرف، صحیح اس کے نیک سیاروں کی طرف، اس طرح ہم متوجہ ہو گئے، آن لائن ہو گیا، بس ہماری دنیا اور آخرت شاندار. تو محبت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بس کی ڈائریکشن کو ہمیں دیکھنا ہے اس کا رخ کس طرف ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے وہ نوجوان، وہ لوگ پسند ہیں جن کے اندر محبت کا ماتا بکثرت ہو، چاہے وہ لڑکیوں کا ہی عشق ہی ان کے اندر غلبہ زیادہ رہتا ہو. فرمایا کیوں؟ اس کی حضرت نے دلیل یہ فرمائی کہ ان کے اندر محبت کا مادہ بہت زیادہ ہے، عشق کا مادہ. تو بھلے وہ غلط ہیں، عشق مجازی کی طرف متوجہ ہے، لیکن مادہ تو ہے نا عشق کا. فرمایا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی صحبتوں سے، دعاؤں سے، توجہات سے ان کا عشق کا رخ بدل دوں. جس طرح پہلے تیزی سے عشق لیلا کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کے بعد جب یہ رخ پہ اگر آ گیا صحیح، تو عشق مولا کی طرف اس سے بھی تیز بھاگے گا. تو فرمایا بس صرف ڈائریکشن چینج کرنی، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی نفسیات میں محبت اور عشق کی دیوانگی ہے، صرف اس کا رخ چینج کرنا ہوتا ہے مجھے. تو فرمایا اس لیے میں وہ لوگ منتخب کرتا ہوں جن کے اندر عشق اور محبت کا غلبہ ہو، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جب غیر اللہ سے دل جو لگا رہے ہوتے ہیں پہلے، لیکن ان کو مڑتے جب وہ یو ٹرن لیتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر پرانے لوگوں کو چھوڑ کے بہت جلدی اللہ کا راستہ طے کر لیتے ہیں. وہی وجہ کہ ان کے اندر عشق اور محبت کا پیٹرول بہت وافر مقدار میں. तो इसको माहौल ही ना समझे, किसी के अंदर मोहब्बत का अगर मटेरियल है या बहुत ज्यादा शिद्दत है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बस उसके रुख को मोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह, तो ये चीज होती है मोहब्बत क्या चीज है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, वल्लदीना आमनू अशद मोहब्बतिल्लाह, अशद मोहब्बत मोमिनीन सिर्फ अल्लाह से करते हैं। उसूल बता दिए अल्लाह ने। इसकी तशरीह में हजरत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे, अगर आपको दुनिया के माल की मोहब्बत है, पैसों की, बीवी बच्चों की, घर बार की, गाड़ियों की, बंगलों की, अपने कैश की, कपड़ों की, 100% भी मोहब्बत है तो जायज़ है, मना नहीं, 100% मोहब्बत है। शर्त क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत को 1% आप बढ़ा लें उसके ऊपर, 101%, 100% दुनिया की मोहब्बत, 101% अल्लाह की मोहब्बत, बस आपने वल्लदीना आमनू शद्दू हुब्बलिल्लाह का मिज़दाफ आप बन गए, आपने आप अदा कर दिया। क्योंकि दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत, ये भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर खुद रखी है, लेकिन इन सब की मोहब्बतों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बतों, अल्लाह की मोहब्बत को गालिब रखना है, ये है फ़न। अब इसको भाई हम बाइफरकेट कैसे करेंगे, कहेंगे तो बड़ा मुश्किल मामला है, तकसीम कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, इतनी बारीकी में कौन जाएगा। तो अब मिसाल रूप समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, अब वो ज़िद कर रहा है, कोई ज़रूरी काम नहीं है, कोई इतनी नेसेसिटी नहीं है, वो कह रहा है जी मुझे टच मोबाइल दें, अब्बा को कह रहा है वो। अब पता है कि बच्चे को अगर मोबाइल दिया, कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो गंदी चीज़ें देखेगा, अल्लाह ओफो मैं नहीं, सब मना कर रहा हूँ, मत दिलाना बच्चे को, लेकिन बच्चा ज़िद कर रहा है, अल्लाह को मैं नहीं दिलाऊँ, कुछ और दिला दो, हलाल की चीज़ दिला दो, ऑल्टरनेट दे दो, नेमत बदल दे दो, गुनाह की चीज़ मत दो, अल्लाह को कुम यार है। लेकिन बच्चे की मोहब्बत जो है वो उसके ऊपर ये आ रही है कि नहीं बच्चा ज़िद कर रहा है, इसको दिल ना टूटे, मुझे दिलाना है। अब दो मोहब्बतें टकरा रही हैं, एक बेटे की मोहब्बत औलाद की और एक अल्लाह की मोहब्बत, अब ये मुकाबला शुरू हो गया। अगर इस बंदे ने अल्लाह की हुकूम को मुकदम रखा, बच्चे को कोई और चीज़ दिला दी या उसको मना कर दिया, ऑल्टरनेट कोई दे दिया, लेकिन उसे अल्लाह के हुक्म को जिंदा और बाकी रखा, बेटे का दिल टूटा तो टूटा, अल्लाह का हुक्म ना टूटा, तो बस ये बंदा वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह का मिज़दाक बन गया, इसने हक अदा कर दिया। मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत की का जो मयार है उसको हम पहचाने, कि गुनाह के हराम काम में जो है उसमें शमूलियत अख्तियार ना करें, तो ये दलील है, गुनाह से बच गया है तो अल्लाह का हुक्म जिंदा कर दिया, तो ये हम इस आयत के मिफदाक बन गए कि हम अल्लाह से अशद मोहब्बत हमने इख्तियार कर ली। शादी में जाना है, अक्सर मिसाल देता रहता हूँ, गैर शरी तकरीब में प्रेशर पड़ रहा है आवाम का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का, भाई आना है आना है, भाई आप कह रहे हैं भाई वह गैर शरी तकरीबात है, मूवी तस्वीर मिक्स गैदरिंग है, आप शरी तकरीब कर लो, ना हो तो फिर आप शिकायत कर। लेकिन अब दो लोग होंगे, या तो जाएंगे कुछ लोग और कुछ लोग नहीं जाएंगे, जो चले गए वो अल्लाह की मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन कम कम रखते हैं, माशरे की मोहब्बत, नफ्स और शैतान की मोहब्बत उनके दिल में ज़्यादा है, अपने दिल की खुशी की मोहब्बत ज़्यादा है, उन्होंने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, अपना दिल नहीं तोड़ा उन्होंने, अल्लाह का हुक्म टूटे तो टूटे, अल्लाह का हुक्म टूटे तो टूटे, मैं अपना दिल नहीं तोड़ूंगा, फला अजीज़ मेरा बुरा मान जाएगा, अल्लाह बुरा माने कोई बात नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते दिल में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है अल्लाह की लेकिन बहुत कम, अब कम मोहब्बत है, साफ से फिर अल्लाह की तरफ से उसके बारे में फैसले होंगे, कुछ लोग वो नहीं गए, दिल टूट गया, बातें सुन ली, लानत मलामत से नहीं, ताले ताने सुन लिए, लेकिन अल्लाह का हुक्म जिंदा रखा नहीं गए, तो ये अल्लाह के अल्लाह से शदीद मोहब्बत होने की अलामत है, और इस आयत का मिज़दाक बन गए। ये एक पैरामीटर हजरत वाला रहमतुल्लाह दिया करते थे, जब कभी गुनाह का तहाज़ो नफ्स और शैतान का कोई आजमाइश है, उस वक्त देखो, अगर तुम ऐसा कुछ काम कर जाओ तो फिर तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर अल्लाह पाक तुम्हें खुद ही आईना दिखा देंगे, तो उसमें खुद ही तुम फैसला कर लेना कि तुम कहाँ किस मेयार पे खड़े हो अल्लाह के मोहब्बत के और इश्क़ के। बातें करने में क्या, बातें तो बड़ी बड़ी सब लोग कर लेते हैं, हज उम्र की माशाल्लाह लोग कर लेते हैं, दाढ़ियाँ भी रख लेते हैं, बातें बनाने में क्या है, लेकिन जब मुकाबले के वक्त पता चलता है, मुकाबले के वक्त, आजमाइश के वक्त, जब नफ्स और शैतान का दबाव हो, मखलूक खूब प्रेशर दे रही हो, उस वक्त अल्लाह का हुक्म मानेगा या मखलूक का मानेगा, अल्लाह आजमाइश भी तो करेंगे, थोड़ी सी लानत मलामत सहनी पड़ती है, अल्लाह का कुर्ब ऐसी थोड़ी मिलेगा, थोड़ी सी तकलीफ तो दिल पर उठानी पड़ेगी ना, तो उसके बाद फिर होता है। तो ये जो वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, अल्लाह ने नहीं कहा मुझसे अशद मोहब्बत करो, ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जो मेरे आशिकीन होते हैं, जो मुझे पहचान लेते हैं, वो मजबूर मोहब्बत कर दिए जाते हैं, वो बग़ैर मेरी मोहब्बत अशद के वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे, जो मुझे पहचान लेते हैं, जो समझ लेते हैं, ये है मुराद। तो ये हमको समझना है कि हमारे क़ुलूब में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, हैरत है, हमारे दिल में सबकी मोहब्बतें आ जाती हैं, गाड़ी की मोहब्बत आती है, घर की मोहब्बत आती है, बाइक की मोहब्बत आ जाती है। अक्सर मैंने देखा लोग गाड़ियों को साफ कर रहे होते हैं जमाते छोड़ के, जमात हो रही होती है मस्जिद में, लेकिन बाहर खड़े हुए अपनी बाइक को और गाड़ियों को चमका रहे होते हैं। सोचने वाली बात है भाई, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अच्छी गाड़ी दे दी, कोई बाइक दे दी, कोई आपको अच्छा घर दे दिया, तो अल्लाह ने तो दिया ये, तो उसकी मोहब्बत का तकाजा ये था कम को ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम नमाज तो पढ़ लो, फर्ज़ अल्लाह का हुक्म है। इसलिए हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे कि नेमतों में इतने गर्क मत हो जाना, नेमतों में इतने गर्क मत हो जाना कि मुनीम को भूल जाओ। मुनीम नेमतें देने वाला आज ही हमारा कसूर है, हम नेमतों में इतने गर्क हो गए, इतना डूब गए कि जिसने नेमतें दी हैं उसको ही भूल गए। वाह भाई, अब्बा को ही भूल गए, जिसने खिलाया पिलाया बड़ा किया अब्बा को ही भूल गए, जिस तरह अब्बा को भूल गए अब्बा को भी भूल हम लोग भूल गए। तो भाई अल्लाह नेमतें इसलिए देते हैं, अल्लाह ऐश हमें इसलिए कराते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए, और जब अल्लाह की मोहब्बत आए तो गुनाह करना छोड़ दें। ये है बस इतनी सी बात। एक हदीस पाक का खुलासा मनकूल है कि हमारे प्यारे आफ़िद हो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मनकूल है कि पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने फरमाया, पूरी कायनात को मैंने अपने बंदों के लिए बनाया, पूरी कायनात को, पूरी कायनात हमारे लिए है। दलील क्या, सूरज किसके लिए चल रहा है, हमारे लिए तो चल रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, इससे फसलें पक रही हैं, चावल पक रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, ये अगर सूरज ना हो तो गिजाई अजनास तैयार ना हो पक के, फल फ्रूट कैसे तैयार हो, तो पूरा एक निज़ाम है। फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर हवा, फिर इस तरह जितने भी बकरियाँ बकरे जो रेवड़ के रेवड़ ये किसने तैयार हो रहे हैं, ये हमारे लिए, हम रात में सो रहे होते हैं रात को 3 बजे 4 बजे, हमें नहीं पता, पूरी पूरा शहर हमारी खिदमत में लगा हुआ होता है, कायनाती निज़ाम होता है। नाइट ड्यूटी के सारे लोग जो अंदरुलेशन से पंजाब से ट्रक लोड हो रहे होते हैं, सारी सब्जियां भिंडियां दुनिया की सारी गजाई अजनास जो ही सुपर हाईवे सब ये सारी तरसील हो रही होती है उनकी ट्रकों में लोड होकर, कि अभी ये कराची में सप्लाई होगा या जो भी शहर है मुख्तलिफ, हम लोग सो रहे होते हैं, हमारे सोने में इसी तरह बकरे कट रहे होते हैं स्लॉटर हाउस में, गाय बछिया ये सब कट रहे होते हैं, वो चिकन्स कट रही होती हैं, सब ये तैयार हो रही होती हैं, सप्लाई हो रही है, सारे रात में सारे काम हो रहे होते हैं। और जब हम फजर में जब उठते हैं नमाज अगर हम पढ़ते हैं, अगर कम पढ़ते हैं ना भाई, इसी अगर कह रहे हैं तो बाहर, तो जब सुबह को जब 7-8 बजे हम बाहर निकलेंगे तो हमें सब्जियां भरी हुई नजर आएंगी ठेलों पे, बकरों की, ये मार्केट में आप जाएंगे बकरे आपको टंगे हुए तैयार मिलेंगे, बछिया मार्केट जाएंगे तो आपको बछिया तैयार आपको कटी हुई मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता था मेरे बंदे रात में सो रहे हैं, जब सुबह उठेंगे इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, तो अल्लाह जब सुबह उठ के जाते हैं बाजार पे नजर दौड़ाते हैं तो भरी हुई मार्केट होती है हर चीज़ से, किसी चीज़ की कमी नहीं होती वहाँ। लेकिन भाई हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, किसी हालत नहीं आती, लोग मर जाते हैं खबर में चले जाते हैं लेकिन अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती। आती है तो नंगी फिल्मों की, आती है तो नामहरम लड़कियों औरतों की, आती है तो मोबाइल पर गंदी चीज़ों की, आती है तो फजर की नमाज छोड़ने की, आती है तो अपने नफ्स और शैतान की इत्तबा की। तो भाई ये तो बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह के साथ। बहुत कम लोग हैं, आती है मोहब्बत लेकिन बहुत कम लोग हैं, तो अक्सरियत का बहुत बुरा हाल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मेरा बंदा खास बहुत खलील है। ये मज़मून अल्लाह ने ही बयान फरमा दिया, खुद अल्लाह ने शिकवा किया है कि मेरे जो ख़ास बंदे हैं, चुना दीदा बंदे जो हैं, चुने में ख़ास बंदे बहुत कलील हैं, यानी जो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं, मेरी करम नवाजियों का जवाब तखवे से देते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत और उसके अहसानात हम कहाँ तक बयान करें, माँ के पेट से लेके अब तक अल्लाह हमें खिला रहा है पिला रहा है। माँ के पेट में हम क्या थे, हमारी कोई वजूद नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, उस वक्त हमें कौन खिला रहा था पिला रहा था, कोई बंदोबस्त नहीं था खाने का। तो अल्लाह ने आवल नाली जो नाफ के ज़रिए जो जारी होती है हमारे पे मुंह के मुंह में लगी हुई थी आवल नाल, उसके ज़रिए से यानी अल्लाह पाक गिज़ा हमें पहुंचा रहे थे। अल्लाह को पता था कि मेरा बंदा इस वक्त बच्चा है, छोटा है, बिल्कुल एक लोथड़े की शक्ल में, बूटी की शक्ल में, ये बेचारे को रोटी पानी चाहिए। अल्लाह ने उस वक्त हमें नहीं भूले और हमें हमारी रोटी पानी का बंदोबस्त किया। और फिर 9 महीने पेट में रखने के बाद अल्लाह ने हमें बाहर निकाला, फिर जब जिस वक्त जो जो हमारी ज़रूरत पड़ी, जिस जिस स्टेज के ऊपर अल्लाह ने वो चीज़ हमको दी, बड़े हुए तो नौकरी की ज़रूरत हुई, तालीम की ज़रूरत हुई, अच्छे नंबर से पास होने की ज़रूरत हुई, जब अल्लाह से लौला भाई, अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदे लब्बैक, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बोल क्या चाहता है। कब अल्लाह ने हमें मायूस किया, शादी हुई फिर बंदे को फिक्र हुई अच्छी लड़की मिल जाए, अल्लाह पाक मुझे अच्छी बीवी मिले, अल्लाह ने कहा ले मेरे बंदे तेरी शादी भी अच्छी लड़की से करा दी, फिर शादी हुई बढ़ती फिर अल्लाह तूने मुझे लड़की अच्छी दे दी, सब कुछ दे दी, अल्लाह औलाद ने एक फौले दे दे, अल्लाह ने वो भी दे दी। तो अल्लाह किस कदर हमें नवाज रहा है, यहाँ तक के हमारी मौत का वक्त आ जाता है लेकिन अल्लाह की अताएँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन मोहब्बत फिर भी हमारे फर्ज में नहीं आती। मोहब्बत आने का वही मैं यार दलील बता दी, हर चीज़ अपना दावा कर सकता है, तो कह सकता है भाई आप तो नफी कर रहे हैं मोहब्बत, हम तो मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। भाई तो उसकी हर दावा, हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते थे, हर दावा अपने पीछे दलील रखता है। अगर मोहब्बत है तो गुनाह से कौन आदमी कितना बच रहा है, कोई दूसरी दलील नहीं है। गुनाह से अगर बच गया तो वाकई इसने अल्लाह की अल्लाह से मोहब्बत का हक अदा कर दिया, और गुनाह से नहीं बच रहा, आदत हराम कामों में लगा रहता है, फिर वो डबोसले बावे उसकी फिर दावा मोहब्बत में कोई वजन नहीं है। मुराद ये नहीं है कि वो अल्लाह का आशिक और मुत्तकी, उससे गुनाह नहीं हो सकता, ख़ता नहीं हो सकती, नहीं माफूम नहीं होते, ख़ता हो सकती है। तो जान लड़ा के कोशिश करते हैं अल्लाह वाले मुत्तकी लोग गुनाह से बचने की, लेकिन चूंकि मासूम नहीं होते, कभी शैतान उनको भी फिसला देता है, कभी फिसला देना मामला अलग होता है, तो फिर फौरन वो अल्लाह से टूटे हुए रबते को तौबा इस्तगफार के वरी से बहाल करके दोबारा अपना ताल्लुक मामला मजबूत कर लेते हैं, तो किसी आदतन किसी गुनाह में मुस्तकिल नहीं रहते। कभी गुनाह हो जाना और है, लेकिन मुस्तकिल हराम कामों में आदत मुबतला रहना ये अलग चीज़ होती है, दोनों में फ़र्क है ज़मीन और आसमान का। तो अगर कोई अल्लाह का आशिक होगा तो वो गुनाहों से बचने की जिसको तौफीक हो रही है और वो ताकत, तो उसका फिर एक ही मैार है मोहब्बत का और उसके इश्क का, वो है तक़वा। बस अगर उसकी कसौटी पर कोई पूरा उतर रहा है तो फिर उसको खुद पता चल जाएगा, खुद उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कहाँ किस मुकाम पर खड़ा हूँ। इसी बात को हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने अयाज़ और महमूद के किस्से में ये वाक़िया बयान किया फ़ारसी अशआर पर, जिसका तर्जुमा यह था, एक बार जो बादशाह था महमूद, उसने तमाम अपने 64 वज़ीरों को जमा किया, और अयाज़ जो उसका ग़ुलाम था और लेकिन अल्लाह वाला ग़ुलाम था, तो उसके जो 64 वज़ीर उससे हसद रखते थे अयाज़ से कि ये बादशाह इसको बहुत चाहता है, अयाज़ को हमें इतना नहीं चाहता। तो उस अयाज़ का मुकाम दिखाने के लिए उसने एक ड्रामा किया, लेकिन वो ड्रामा किया था, लेकिन जिसको जो चीज़ें थी वो तो हकीकत में नहीं थी, बहरहाल उसका मुकाम दिखाना था अयाज़ का। तो उसने सारे ख़जाने हीरे जवाहरात और करीबे सबको एक जगह जमा किया और अपने 64 वज़ीरों से कहा कि आज जो जिस चीज़ के ऊपर हाथ रख देगा वो उसकी। तो लोग बड़े हैरान हो, वज़ीर वगैरह, फिर किसी ने जो हुसन परस्त आशिक थे उन्होंने कनीज़ों पर हाथ रख दिया कि इनसे हमारा निकाह हो जाए, जो हुसन के आशिक थे उन्होंने उन पर हाथ रख दिया, वो उनको मिल गई, कोई हीरे जवाहरात का पैसों का लालची था तो उसने उस पर हाथ रख दिया, सब ने कुछ ना कुछ रखा, किसने मनसब पे काम है फला मनसब चाहिए। इसी तरह आखिर में अयाज़ ने कुछ नहीं लिया, तो महमूद ने कहा कि ए अयाज़ सब ने कुछ ना कुछ ले लिया, तू भी तो कुछ ले। तो अयाज़ ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस उसने कहा नहीं, मैंने तो सबको कहा है तुम भी लो। उसने कहा अच्छा आप ज़िद कर रहे हैं बादशाह सलामत, तो ठीक है। तो उसने सारी चीज़ों पे एक नज़र दौड़ाता है और फिर वो घूम के आता है और बादशाह के कंधे को पर हाथ रख देता है और फिर कहता है देखिए बादशाह सलामत, आपने अभी वादा किया जो जिस चीज़ पे हाथ रख देगा वो उसकी। कहने का हाँ मैं अपने वादे में कायम हो गया, मैंने अब आपके ऊपर हाथ रख दिया है, मुझे आप चाहिए। तो वो हंसने लगा, तो उसने कहा अरे मैं तो बुढ़ा बादशाह हूँ, मुझे लेके तुझे क्या मिलेगा बेवकूफ़, ये अपने साथी को देख, अपने भाइयों को उन्होंने क्या मज़े वाली चीज़ें उठाई हैं, मुझे लेके क्या मिलेगा। तो अयाज़ ने कहा कि बादशाह सलामत ही जितने भी लोग हैं सारे बेवकूफ़ हैं, इन्होंने तो छोटी छोटी चीज़ें लेकर दिल को बहला लिया, और अगर आप मुझे मिल गए गोया बादशाह मेरे कंट्रोल में आ गया, जब बादशाह मेरे कंट्रोल में आ गया तो ये सारे 64 वज़ीर मेरे, ये सारी करीजे मेरी, ये सारे हीरे जवाहरात मेरे, क्योंकि बादशाह मेरा। तो फरमाया कि ये चीज़ होती है, तो ये कहलाता है ताल्लुक़ माल्ला। तो जो आदमी इस हिकायत के ज़रिए मौलाना रूही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ताल्लुक़ माल्ला को बढ़ाओ, दुनिया तुम्हारे मोहब्बत तुमसे खुद करेगी, तुम्हारे मसाइल अल्लाह पाक खुद करेंगे, क्योंकि तुमने खालिक कायनात खालिक दुनिया से रब्ता कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इनकी हैसियत जो है बिल्कुल निचले दर्जे में आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत लगो, बड़ी चीज़ के पीछे लगो, मुराद अल्लाह की अल्लाह के से ताल्लुक़ को अपने मजबूत करो। तो हदीस शरीफ क्या बयान हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। भाई जब पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया तो हम भी तो किसी के लिए बने ना। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बनाया और तुमको अपने लिए पैदा किया, अपने लिए बनाया, पूरी कायनात तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। तो भाई पूरी कायनात अपनी ड्यूटी कर रही, कभी सूरज ने कहा आज नहीं निकलूँगा बहुत थका हूँ, रोज़ क्या मैं किसी के अब्बा बनाऊँ पर रोज़ निकल के आपको रोशनी देता हूँ, आज तो नींद आ रही है सो रहा हूँ। भाई इस तरह हम कहते हैं ना यार फजर की नमाज बहुत थका हूँ, उठा नहीं जा रहा, आज सो रहा हूँ, ड्यूटी हमने नहीं करनी। सूरज अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, चांद अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, हवाएं चल रही हैं, जिसका बादल अपनी जगह चल रहा है, जिसने जो अल्लाह ने जिसको जो काम सुपुर्द किया है वो कभी उससे इख्तलाफ नहीं करता, कभी उसके खिलाफ नहीं जाता। फरिश्तों से भी फरिश्ते भी कभी नाइली नहीं दिखाते, ये हम सिर्फ हजरत इंसान होते हैं जो डंडियाँ मारते रहते हैं अपनी ड्यूटी में, लेकिन चूंकि अल्लाह के लाडले चाहते हैं हमें, तो अल्लाह दरगुजर करते रहते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाते रहते हैं। तो अल्लाह से तो ये चीज़ होती है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत को जो आंख अदा करना है वो अल्लाह की नेमतों का मुराकबा करना चाहिए, मोहब्बत बढ़ाने का मजबूत वाला इरशाद फरमा देते हैं। मोहब्बत अगर कम है तो अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका हम मुराकबा किया करें। हजरत फरमा देते सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी कि अल्लाह पाक ने मुझे सूअर और कुत्ता नहीं बनाया। ये इन चीज़ों से गौर व फिक्र से, आज हम गौर व फिक्र तो है लेकिन मोबाइल पर है, वो क्या लड़की है, क्या बाल हैं इसके, क्या इसका नंगापन है, क्या इसका सेक्स है, आजकल तो यही है ना, यही टॉपिक है, यही बात है आजकल। आज गौर व फिक्र इन चीज़ों में, अरे जालिम कभी अल्लाह की सिफात के ऊपर गौर किया, कभी अल्लाह की एहसानात पर गौर किया कि अल्लाह ने हमें फुअर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कुत्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। फिर उसके बाद दूसरा एहसान, अल्लाह इंसान बना देता लेकिन हिंदू बना देता, फिर क्या करते, दाइमी जन्नत मिलती, फिर जानवर उसे पत्थर होते, जय राम नमाम हारा नाम होता, पंडित बने होते, चुटिया होती, गंजे लगे होते, गधे घोड़े का जो गाय का गौ माता का पेशाब पी रहे होते लोग, और फिर उसे स्नान करते और कहते हैं मैं पवित्र हो गया, पाप हो गया। बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े लिखे लोग ये नापाक नजिस पेशाब से अपने आप को पाक करते, अल्लाह ना करे अल्लाह पाक अगर वहाँ पैदा कर देते, तो अल्लाह पाक ने इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, फिर मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया फिर साहिब ईमान बनाया, साहिब ईमान बनाए फिर अच्छे माँ बाप दिए, फिर अच्छे पढ़े लिखे घराने में पैदा किया, फिर अल्लाह ने हाथ पैर पूरे दिए, पता चला अल्लाह पाक काला पीला बहुत ही बच्चा कल दांत टूटे गए या आड़ा टेढ़ा बना देते या ऐसा बना देते कि बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे जो बेचारे चौपायों की तरह से चलते हैं। तभी देखा इंसानों को कि ज़मीन पर चार पाँव वाले जो जानवर होते हैं बेचारे इस तरह भी चलते हैं, उनको फालिज गिरा हुआ होता है। अल्लाह ने हमें सही हाथ पैर दिए, अच्छी शक्ल सूरत का बनाया, आँखें हमारी सही हैं, कोई अल्लाह ने हमें ऐबदार नहीं बनाया है ना, बदशगल नहीं बनाया, दांत टूटे नहीं बनाए, नाक कटी हुई अल्लाह ने नहीं बनाई, तो कहाँ तक अल्लाह की उन नेमतों का शुमार अदा करेंगे। कहीं बैठते तो लोग पसंद करते हैं बातचीत का, अल्लाह ने सलीका हमें सिखाया, इतने अल्लाह के एहसान आते हैं। वही अल्लाह ने फरमाया अगर अल्लाह की हमदो सना तारीफें बयान करोगे तो तमाम दुनिया के समंदर अगर स्याही बन जाए और तमाम दरख्त बन जाए, दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए, तो भी अल्लाह की वैदानियत, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत, उसकी सिफात को, उसकी करम नवाजियों को, बड़ाई को बयान नहीं कर सकते, समंदर खुश्क हो जाएंगे। और फिर अल्लाह आगे फरमा रहा है और फिर दोबारा अल्लाह पाक उन समंदरों को भर दे, फिर भी अल्लाह की वो सिफात और करम नवाजियां बयान करें तो अल्लाह की अज़मतों का अदा नहीं कर सकते, इतनी है इनसे दस्त हैं भाई। तो हमारे दिल में सवाल ये पैदा होता है अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं आती जिस हिसाब से होनी चाहिए, जो अल्लाह के एहसानात हैं, जो अल्लाह की करम नवाजी हैं, ये कब तक हम बचपना करते रहेंगे। अच्छा वक्त, मज़ेदार वक्त, वो हम नफ्स और शैतान के लिए रखते हैं। जब अल्लाह पाक हमें जवानी देता है, ताकत देता है, हुस्न देता है, आसाइशें देता है, तो नफ्स हमारा बदमाशी मांगता है, हरामकारियां मांगता है, लड़कियां मांगता है, अक्सर लोगों का बदमाशी, शराब, जिना, बदकारी, जो जितना पैसे वाला उतना ज़्यादा बदकिरदार। अभी अल्लाह फ़कीर कर दे, नामर्द कर दे, कैंसर पैदा कर दे, फिर मैं देखता हूँ कौन सी बदमाशी किसी को याद रहती है। फिर एक ही लफ्ज़ होगा, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह। ये क्या बात हुई? अच्छा वक्त देते तो हम नफर शैतान के लिए रखते हैं, कोई तकलीफ मुसीबत आती है तो फिर हम अल्लाह को पुकारते हैं। ये बेवफाई नहीं, ये जुल्म नहीं कि अच्छा वक्त अल्लाह को याद ही नहीं कर रहा, वो तो हमने रखा हुआ है नफर शैतान के लिए, फिरौन बन गए उस बच्चे वक्त में तो, और जब तकलीफ आई तो फिर मुसल्ला बिछाया, सजदे में चले गए। चलो एक वक्त हो, दो वक्त हो, ये तो एक एक, एक पूरी एक, एक जिंदगी गुजर जाती है इस तरह से। यही बात अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं, जब तुमको कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उठते बैठते, लेटते जाते, सोते बैठते, हर वक्त हमें पुकारते हो, और फिर अल्लाह पाक आगे क्या मर जाए आदमी शायद के ऊपर, तो खुशी में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह फरमा रहे हैं फिर मैं जब तुम्हारी इस तकलीफ को दूर कर देता हूँ और तुम्हारी हाजत को पूरी कर देता हूँ, तो बाद में ऐसे हो जाता हूँ जैसे मुझसे वास्ते ही नहीं पड़ता। तो ये जज्बाती बयान नहीं है, ये अल्लाह शिकवा कर रहा है, मोहब्बत मल्ला की मोहब्बत है, शर्म दिलाना, कुछ तो शर्म करो। बिल्कुल फिर ऐसे हो जाता जैसे मुझसे कभी वास्ते नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे बोल के भागते हो, ऐसे कहते हैं जानवर रस्सी तोड़ा के भागता है तो पलट के नहीं आता, ऐसे भागते हैं, तो इंतजार करते हैं अल्लाह पाक अब दूसरी दफ़ा पिटाई करेंगे ना आप मेरी, फिर मैं आऊँगा आपकी तरफ, अभी तो आपने मुझे सही कर दिया ना, फिट कर दिया, आज़ादी नहीं, परेशानी दूर कर दी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बस फिर मैं आपको याद उस वक्त करूँगा जब आप अपने ज़ात को याद दिलवाएंगे, जब कोई पटाई लगाएंगे ना मेरे किसी गुनाह पर, फिर मैं दोबारा मस्जिद में आऊँगा, अभी तक तो मैं जा रहा हूँ, गुड बाय टाटा। तो ये भाई, तो ये कब तक हमारा बचपना इस तरह से चलता रहेगा, यहाँ तक कि भाई हजारों साल की ज़िंदगी नहीं है, थोड़ी सी ज़िंदगी होती है, तो बावफा बंदे बने, नमक हरामी से हम बचें। अक्सर रिक्शों के पीछे भी लिखा होता है, बसों के पीछे भी लिखा होता है, किताबों में भी ये लफ्ज़ है, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, असल से फ़तेह नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं, पढ़ते हैं ना अक्सर, असल से फ़तेह नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। कोई हमारे साथ ज़रा सी वेफाई कर जाते हैं तो हम कहते हैं नस्ली आदमी हो तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी करता, ख़ानदानी आदमी नहीं है, ख़ानदानी लोगों की शान अलग होती है। तो जब हम आपस में ऐसे हमारा ज़र्फ है, तो भाई हमने कभी सोचा कि हम कितने ख़ानदानी साबित हुए अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ हम क्या है दो पैमान निभा रहे हैं, क्या मोहब्बत का हम अल्लाह का अदा कर रहे हैं। जब अल्लाह को तड़प के पुकारते हैं, अल्लाह हमारी सुनते हैं। कभी खुदा की कसम भाई कहता हूँ, कभी महरूम नहीं किया। कभी महरूम भी अल्लाह ने उस वक्त किया है कि जब हमारी दर्द में दर्द दिल में जब कमी होती है। खुद मौलाना शबर तानी साहब इरशाद फरमाते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई, मुझे याद नहीं पड़ता कभी कोई दुआ मैंने अल्लाह से तड़प के पुकारी और अल्लाह ने मेरी ना सुनी। अरे हाँ, सिर्फ वही दुआएं मुझे अच्छी तरह याद है जो कबूल नहीं हुई, जिनमें दर्द दिल शामिल नहीं था, जो मैंने तड़प की दुआएं नहीं करी वो कबूल नहीं। जब भी मैंने अल्लाह से दुआ लगाई ये तड़प की, अल्लाह ने मेरी सुनी। तो कहाँ तक अल्लाह की मोहब्बत होगी और उसकी इश्क की हम बात करें, तो भाई इस बयान का खुलासा ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करें, अल्लाह का इश्क हासिल करने के लिए जो है कोशिश करें। कि जैसे फजर की नमाज है, ये भी तो इश्क और मोहब्बत की के दलालत पेश कर दी है। आह किस कदर तुमको शब की बेशब बेदारी है, आह किस कदर गिरा, आह किस कदर गिरा यानी मुश्किल, आह किस कदर गिरा तुम पर शब की बेदारी है, हाँ तुमको हमसे कब, तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। ये उन लोगों के लिए कि जिन लोग जो लोग फजर की नमाज छोड़ते रहे। तो ये भी एक अल्लाह वाले ने बड़ा प्यारा शेर फरमाया अल्लाह पाक की तरफ से कि तुम्हें हमसे कब प्यार है, तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है। अजान में कहा जाता है सलात व खैरु मिनन नौम, कि नमाज जो है नींद से बहुत प्यारी है, बहुत बेहतर है नमाज। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता सोते वक्त तो कहाँ गलब, वही बात कि मोहब्बत का जबानी कलाम करने से मोहब्बत नहीं होती खाली, दावा अगर इश्क मोहब्बत का है तो उसको निभाना पड़ेगा, ऐद वफा निभानी पड़ेगी, उसका अल्लाह को अमली सबूत देना पड़ेगा। फजर में उठ के नमाज पढ़े, टाइमिंग सेट करे, ये है इश्क की मोहब्बत, ये है दलील मोहब्बत, वरना बातें बनाने में क्या है। दुनिया के कोई माशों को बोले 5 बजे में मिलूंगी, अगर इसके अलावा कोई दूसरा टाइम नहीं। आशिक होगा ना खुशी में पूरी रात सोएगा ही नहीं, 5 बजे मुलाकात है, ऐसा होगा सो गए तो मेरी मुलाकात ही ख़त्म हो जाए, टाइम गुजर ना जाए। तो कई ऐसे आशिकीन मिले तो यह मजाक की बात नहीं, हकीकत में बताया, कह रहे हैं मैं खुशी से नींद ही नहीं आया और ये डरता है अगर सो गए 3-4 बजे और टाइम गुजर गया तो नुकसान ना हो जाए, तो इस वजह से पूरी रात जागती में गुजार दी, सोई नहीं। तो दुनिया की पलीद इश्क का तो ये हाल आज हमारे फजर की नमाज में देखें, 1.5 सफ होती नहीं नमाज, तो कोई 2 वक्त का नमाजी है, कोई 3 वक्त का, कोई 4 वक्त का, 5 वक्त के नमाजी तो बहुत लोग कम है, और वो भी बेचारे ज़्यादा बूढ़े लोग नजर आते हैं जिनका पक्का पता चल जाता है कि बेचारे 1-2 साल से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी नहीं है ना। तो बाकी जवान लोग और बिल्कुल जो फिट लोग होते हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं। तो ये क्या मोहब्बत है बहरहाल। बस आज प्यार इसी पर मौकूफ करते हैं अल्लाह की मोहब्बत, और आखिर में इसका एक ज़रिया बता दूँ। एक ये अल्लाह की मोहब्बत आएगी कैसे, एक हदीस शरीफ हज़रत फ़ाला रहमत इरशाद फरमाते थे, ये पढ़ लिया करो दुआ मांगो करो उसके ज़रिए से, कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से दुआ सिखाई, अल्लाह अपनी अशद मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा और उनकी मोहब्बत अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। कौन सिखा रहा है दुआ, इमामुल अंबिया फ़ैज़ुल्जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की मोहब्बत का सवाल कि अल्लाह हम तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा हमें, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफसल उम्मत को सिखा रहे हैं अल्लाह उनकी मोहब्बत अता फरमा कि जो तुझसे मोहब्बत करने वाले, अल्लाह वालों की मोहब्बत, और फिर आगे अल्लाह उन आमाल की मोहब्बत अता फरमा दे जिनसे तेरी मोहब्बत हमें हासिल हो जाए, यानी अल्लाह की मोहब्बत और उन आमाल की मोहब्बत जिनसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, बीच में अल्लाह वालों की मोहब्बत अफसल हम सिखा रहे हैं, ये बीच में पुन का वास्ते का काम दे रही है। जब तक किसी अल्लाह वाले की अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह की मोहब्बत इंसान को हासिल ही नहीं हो सकती, ये पुल का काम करती है। तो आशिकीन की सोबत से आदमी आशिक बन जाता है, लोहार की सोबत से आदमी लोहार बन जाता है, दर्जी की सोबत से दर्जी जो कपड़े सीता है जो उसकी सोबत में आएगा तो बेहतरीन दर्जी बन जाएगा। तो जो जिस फील्ड का माहिर फ़न होगा उसकी सोबत में रहेगा वो फ़न उसको हासिल हो जाएगा। तो जो अल्लाह के आशिकीन होते हैं जब उनकी सोबत में रहेगा चंद दिन में वो भी आशिकीन में इसका शुमार हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है पूर्ण मास्क यकीन भी जो पुराने पाप से, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो बैठे बैठे जाए मैं अल्लाह का जम लगा के आशिक बन जाऊँ तो भाई वो ऐसा होता नहीं है, ये अल्लाह चाहे तो ऐसा भी कर दे, अल्लाह की क्या कमी। लेकिन सुन्नतुल्लाह ये जो कुरान हदीस का जो खुलासा इसको उलमा और मशाइख बयान करते आ रहे हैं, जिसको ख्वाजा साहब ने शेर के बारे में फरमाया था इस शेर में कि करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है, कि ये खुद से आग नहीं लगा सकते दिल में, जो दिल पहले से अल्लाह के इश्क में जल रहे हैं उनके कुलूब के करीब अपना दिल लेके चले जाएं, सोबत का नूर मुंतकिल होगा और थोड़े अरसे में हमारे अंदर भी वही शमा रोशन हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अपना सच्चा आशिक बना ले, नफ्स शैतान की इतबा से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आखिर नज़रत वाला इरशाद फरमाते थे कि पाँच अमाल बयान फिर भी अगर वो बहुत ज़रूरी है, वरीला बनाने वाले पाँच अमाल हैं, जो भी इंशाल्लाह ये पाँच अमाल कर लेगा तो अल्लाह पाक उसको बहुत बड़ा वरीला बना के फिर दुनिया से उठाएंगे। तो पहले तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, एक डेढ़ महीने की मेहनत है किसी भी कारी साहब से नूरानी फ़ायदे से कुरान पाक को दुरुस्त करने, तजवीद दुरुस्त करने। नंबर दो, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, थोड़ी के नीचे से दाएँ से और बाएँ से, चारों इमामों का जमा किसी का अख्तलाफ नहीं है। एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है और चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी छोटी है तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुनाना हराम है, और हराम काम करने वाला तभी अल्लाह का वली और दोस्त नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल बारीक रखें, बड़ी मुश्किल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, वो जन्नत हौज़े कौसर के करीब ना आए। नंबर दो, मुनकर नकीर कब्र में जब आएंगे तो गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन, उसे कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। जायज़ दर्जा मूछ का ये है, अगर किसी को मूछे रखने का शौक़ है तो ऊपर का होंठ का किनारा जो है वो खिला रखें, और अगर होंठ के ऊपर के किनारे के ऊपर चंद बाल भी आ गए तो बड़ी मूछ के हुक्म में मामला आ जाएगा, हो गया। और तीसरा अमल है मा अस्सला मिन अलकाबैन मिन अलवारिफिनार, ऊपर से आने वाला लिबाफ जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों को टखने खोलना दो सूरतों में वाजिब है, जब हम खड़े हों और जब चल रहे हों, बैठे लेटे तो भले छुप जाओ, तो जब जब खड़े हों और चल रहे हों टखने खोल के रखना वाजिब है, तो जहन्नम में जलने की वाजिब है। तो पैंट अगर पहने हो तो उसको पैंचे फोल्ड फोल्ड कर लें, शलवार पैंचे वगैरह जो भी हैं उसको ऊपर से नेफा थोड़ा सा फोल्ड कर लें, तो टखने खोल के रखना वाजिब है सुन्नत के साथ साथ। और चौथा जो अमल है वो नज़रों की हिफाजत है, कुल लिलमुमिनीना यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम वयहफ़िज़ू फ़िमन जहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाज़त करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। आगे अल्लाह पाक ख़वातीन को भी हुक्म दे रहे हैं कि वो भी अपनी नज़रों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। तो तमाम नामहरम लड़कियाँ होती हैं, कज़न वगैरह, मामूज़ात, खालाजात, चचाजात, और फिर इस तरह भाभी, इसी तरह से चची, और ये साली और ये ममानी, ये सारी नामहारिम हैं, तो इनसे नज़रों की हिफाज़त लाज़मी है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया नाज़िरा मंज़ूर है, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे और उस पर भी लानत फरमा जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। तो जो पेश करती हैं ख़वातीन बेपरदारी के सामने आ जाती हैं नामहरमों के, तो उन पर भी लानत आ रही है, जो देख रहे हैं उन पर भी लानत, और किसकी इमामुल अंबिया जिनकी नहीं कायनात करनी है, तो ये चैन मिलेगा कभी? तो नज़रों की हिफाज़त करें। और पाँच अमल, दिल में गंदे ख्यालात लेकर ना आएँ, दिल को पाक साफ रखें कि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, दिल को बिल्कुल साफ रखें। और पाचाम आमान की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ मुनासब हो तो वहाँ तल्लो फ़ायम कर लें, वो थोड़े अरसे में इंशाल्लाह एक एक करके पाँचों माल की इंशाल्लाह तौफीक को देते हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह जो तुझ भी बोला गया सुना गया, अल्लाह सुबह बारह दम कबूल फरमा ले, अल्लाह कहने सुनने में वो गलती वो भी शान रहम छिपाफ़ माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारा मिल बैठना अल्लाह तेरी रज़ा तेरी खुशी की नहीं, अल्लाह सुबह बारह दिन कबूल फरमाते, हम शक्ति कामिल मफ़रत फरमा, या अल्लाह हम सबको कामिल तफ़ा नसीब फरमा, या अल्लाह हम सबको अपना सच्चा वल्लज़ी नामो अशद्द हुब्बा लिल्लाह व सच्चा मिस्ताक बना दे, अल्लाह आशिकीन हक़ में से अल्लाह पाक हमारा शुमार कर लिए, अल्लाह पाक अपना दिल हम तोड़ लें किसी गुनाह के मामले में लेकिन अपने कानून को टूटने से बचा लें, ऐसी रिलायत खशियत और ऐसा ताल्लुक माल्ला हम सबको नसीब फरमा, या अल्लाह आवरीन मजलिस में से जिसके दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह तू जानने वाला है हम सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे, जो भी आए महरूम ना जाए दुनिया भी बना दे आखरत भी बना दे, या अल्लाह जितने भी मुसीबत होता है अल्लाह उनकी नसीब के बुदीन फरमा, तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा, या खातून एक हैं उन पर कैंसर भी हुआ हुआ तो जादू बद असरात भी उन पर हैं, दुआ करें अल्लाह पाक बिल्कुल मुकम्मल शिफा कुल्ली नसीब फरमा, और जो भी उनको दर तकलीफ़ हो रही हैं अल्लाह उनको उसे निजात देकर बिल्कुल शिफा याबी अता फरमा, या अल्लाह उनको तंदरुस्ती आफ़ियत से खूब लंबी उम्र अता फरमा, या अल्लाह मस्क का नाम निशान बता दे, या रब करीम या रब रहमीन, बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की जान और इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा, ये जो मलिन फबीस यहूदी जो ज़ुल्म सितम ढा रहे हैं और उनके साथ जितने लोग के हवारी मिले हैं अल्लाह इन सब को तबाह बर्बाद कर दे, सफ़ेदगी से मिटा दे, इनको इबरत का निशान बना दे, अल्लाह उन सब उम्मत मुस्लिमों को ईमानी गैरत अता फरमा, इनकी चीज़ों का बायसाट करने की 100% हम सबको तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और मेरे वो शरीन की और हमारे जिंदा मरमीन की कुल मोमिन मुमिनात की कुल जिन्नात की सब की कामिल मफ़रत फरमा, सबको जन फिरदौस में على السلامة وفهم نسيف الناس في قبل الأمور سبربيك وشفى ودين غير الصالحين دعا قرين الله جب سے زدن کی رسولی وہ فتم فرما دیں شفا کلی نصیب فرما دیں کچھ بچیاں بدر بیٹھی ہیں ان کے رشتوں کی نہیں پائے بوا کریں اللہ جب سے زدن بہترین جب ان کے رشتے کراتے جہاں دین نے بے لڑائی ہیں آسیت ہوئے کچھ لوگ جادو بد افراد میں مبتلا ہے اللہ ان جادو گرو کو ہدایت عطا فرما یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ان جادو گرو کو آلاف کر دے تو برداشت کر دے کہ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے اور خاص طور پر دعا کریں جب شدید دو سب کو گرمی بھی لہر چل رہی اللہ اس گرمی کو اپنی شان رحمت سے ٹھنڈک میں بدل دے اللہ آپ امت مسلموں پر رحم فرما دے یا اللہ کتنے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے گرمی سے اللہ پاک باران رحمت برسا دے باران رحمت برسا دے باران رحمت برسا دے رحمت للعالمین آفرت جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا اللہ ہمارے اعمال نہ دے تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو رسول اللہ نے مانی بھی یا اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے ٹھنڈک عطا فرما دے بادل بھیج دے تپش کو ختم فرما دے یا اللہ اپنی ناراضی کو دور فرما دے یا اللہ تو بخش دے معاف فرما دے تو نے خودید و کہلوایا ہمیں کہ میری رحمت اور میری غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے نہیں گلے یا اللہ اپنی رحمت ہی برسا دے اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے یا اللہ کرم فرما دے اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد مہربان تفضل اللہ انتم نفرت السن العظیم اللہ علیہ وسلم